أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزاني محترم عزاداران سيد الشهداء سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے مولا و آقا وارث عزا صاحب عزا وارث حسین کی خدمت میں یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ماہ محرم اور اس کی آمد پر تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال دنیا بھر میں جہاں جہاں سید الشہداء کے فرش عزا بچھایا جا چکا یا بچھنے والا ہے، جہاں عزاداری شروع ہو چکی جا شروع ہونے والی ہے، سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما اور دشمنان اہل بیت کے شر سے ان کو محفوظ فرما اور ہماری اس قلیل کوشش کو، اس ناقص کوشش کو، اس ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں کامل کر کے قبول فرما اور اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہمارے مرنے کی اور مرنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب فرما، ہمارے نام اگر آج تک اے خدا تو نے عزاداری سید الشہداء میں نہ لکھے ہوں تو آج کی رات ہمارا نام عزاداری سید الشہداء میں تحریف فرما. عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت قرآن مجید کی مشہور و معروف اور مکتب اہل تشیع کے ممبروں کی زینت ہے. دوسرا جو مقام ہے یا دوسری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں آج سے یا کل سے ماہ عزا جو ہے شروع ہو جائیں گے، اور بہرحال یہ تو یقین ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انتظامات عزا کے ہو چکے، علماء کو جو بلانا تھا وہ طے ہو چکا، کہاں کیا مجلس ہوگی، کیا ٹائمنگ ہوں گے، کب فرش عزا بچھے گا، سب کچھ طے کیا جا چکا. یہ فوراً بقرعید ابھی نہیں گزرتی تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں طے ہونا. پوری دنیا میں ابھی میں چلا رہا تھا تو ایسی کسی وجہ سے مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوئی کہ اچانک ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد ایئرپورٹ میں پولیس والا آتا ہے، مجھے اٹھا کے انہوں نے کچھ سوال شروع کیے تو وہاں پہ اس نے بھی مزید ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کی، کہا آپ کا ریزن کیا ہے جنیوا جانے کا، تو میں نے پہلے تو کہا میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ بالآخر یہ چھٹیاں تو نہیں ہیں آپ کا، 10 دن کا تقریباً 12 دن کا وزٹ ہے، اسے ریٹرن ٹکٹ دیکھا ملا. تو میں کہا اس میں ہمارے کچھ ڈیز ہوتے ہیں جن کو مارننگ ڈیز کہتے ہیں، یہ سیڈ ہوتے ہیں، اس میں ہم سور مناتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کیا ہوا، تو تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسپلین کیا. اس کے لیے وہ بہت حیرت کی بات تھی، کہتے ہیں 1400 ایئر گزر جانے کے بعد آپ آج بھی اس کو مناتے ہیں. تو کیونکہ وہ آج کل مسلمانوں سے حساس ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اور آپ کی بھی جب جانچ پڑتال کر پوچھ رہے ہیں وہ اسی لیے. اچھا، پہلے اس نے بہت ستی سے سوال کیے، لیکن اٹھتے اٹھتے اس نے ایک سوال اور کر لیا کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے. تو میں نے کہا منسٹر آف ریلیجن منسٹر ہوں میں. तो उस पे वो वहीं पे रुक गया। उसके बाद उसने भी सवाल किया, बर्तार करी उसके, क्योंकि मैं वहां पे मुजरिम साबित हो गया, मेरा ताल्लुक दीन से निकल आया था, वो भी मिनिस्टर था मैं, लिहाजा। लेकिन उसको बड़ी हैरत इस बात पे थी कि इतने अरसे गुजर जाने के बाद आपको इनवाइट किया जा रहा, आप जा रहे हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, आप पहले भी कहीं गए? तो मैंने बताया कि मैं इधर गया उधर गया। तो जाहिर है उसको, अभी तो मैं बता रहा था, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर गया और जाने के बाद वो आया। और फिर क्योंकि मेरे फ्लाइट का बिल्कुल वक्त करीब था जब वो आया है, गेट का भी ऐलान हो चुका था, तो मेरे साथ गेट तक आया। इतने उसका फोन आ गया, जो कुछ मैंने कहा था उसने उसकी तस्दीक कर ली। उसने कहा अच्छा मुझे बताओ कि इसको हम कैसे देखें? तो मैंने कहा तुम करबला डालो या इमाम हुसैन डालो, तो वहाँ सब कुछ डिटेल आ जाएगी, पढ़ के देख लो तुम। जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही हो, ये मैंने कहा एक मुल्क में नहीं होता, दो मुल्क में, दुनिया के तमाम मालिक में होता है। उसने देखा, उसने बाद में जब मुझे खुदाफिस करने लगा वहाँ पहुंचकर, तो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने भी उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपके लिए अगर ये नहीं थी, मैं नहीं कह रहा कि आप मुसलमान हो जाओ या आप शिया हो जाओ, इसको कबूल कर लो। मैंने कहा एक हादसा हुआ, एक इमाम को हमारे कत्ल किया गया, लेकिन कोई वजह तो है, कोई सबब तो है कि 1400 ईयर्स गुजर जाने के बावजूद हम उनका तस्करा करो इस बड़े पैमाने से कर रहे हैं। तो उसने कहा ये खुद मेरे लिए सवाल है, क्योंकि वो अंदर से उसको फोन आ गया था कि हाँ ये तो होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो उसने, मैंने उससे कहा थोड़ी सी जाके रिसर्च करना जब तुम्हें टाइम मिल जाए, शायद तुम्हारी कुछ बात समझ में आ जाए। हकीकत भी इसी तरह से जानी मोहतरम कि अगर हम अपने बच्चों को समझाएं कि मसला क्या है, अहमद हमारे और भी शहीद हुए, कौन कौन आए, इमाम हमारा जो बिस्तर में ऐसी तभी मौत मरा हो, जिंदानों में गए, इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, इमाम मुश्तबा को, तमाम अहमद अथार को। लेकिन करबला क्यों इस तरह से मनाई जाती है, करबला आज क्यों इतनी जिंदा है, करबला मनाने पर इतना ज्यादा एतराज, इतना ज्यादा एहतमाम क्यों करते हैं? दुनिया में बहुत सी चीजों के एहतमाम होते हैं। देखिए एक तो बिल्कुल, क्योंकि आज मुकदमाती गुफ्तगू में इतना मैं अर्ज करूं कि अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आप करबला क्यों मनाते हैं, तो उसका पहला जवाब यह है कि ये सुन्नत कुरान है, कुरान ने ऐसा किया है इस लिहाजा हम करते हैं, अगर कुरान ने ना किया हो तो हम भी ना करते। इसलिए कि कुरान मजीद में वो तमाम हादसात जिनमें इबरत पाई जाती थी, खुदा बंदे मुताले उन हादसात को बयान किया, चाहे वो जनाब मूसा का वाक्य हो, चाहे जनाब नूह का वाक्य हो, चाहे जनाब आदम का वाक्य हो। अगर एक हादसा एक वाकया होना था और उसको माजी का हिस्सा बन जाना था और उसको दोहराने कोई फायदा नहीं था, तो वो किताब जो कि हमेशा के लिए आ रही है, जिसमें सिर्फ बहुत मोटी किताब भी नहीं है, जिसमें 6000 के करीब आयतें हैं, उनमें हजारों आयतें जो है उन वाकयात की नजर कर देने के माने है, खुदाबंद मुताल तारीख को दोहराकर ये बताना चाहता है हर तारीख भुलाई नहीं जाती है, बल्कि ये तारीख को जिंदा रखना चाहिए कि क्योंकि ये तुम्हें आईना दिखाती है, ये मिरर है तुम्हारे लिए कि कल क्या हुआ था, तुम्हें आईंदा क्या करना है। करबला जो है हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से है, करबला हमें जो मनानी है और मनानी चाहिए, उसमें सवाल ये होना चाहिए कि मजलूम करबला ने क्या पैगाम दिया हमें, मजलूम करबला क्या चाहते थे, किस चीज के खिलाफ मजलूम करबला उठे थे, मजलूम करबला का एम क्या था, उनका मकसद क्या था, उनका हदफ क्या था। अगर वो हम वाकिफ ना हो सकें करबला से, तो फिर करबला मनाने का हमें फायदा नहीं रह जाता। करबला इमाम हुसैन ने एक कुर्बानी दी, उसका हदफ था, एक मकसद था, उस पर आज आप देखें मिलियंस डॉलर खर्च किए जाते हैं करबला को बचाने के लिए, मिलियंस के हिसाब से आवर्स खर्च किए जाते हैं, लोग आवर्स खर्च करते हैं, ट्रेवल करते हैं, सिर्फ ये कैसेदारी में शिरकत कर ली जाए, मजलूम करबला का वाकये को महफूज किया जाए, उसको जो है बचाया जाए। दुनिया भर में आप देखें, दुनिया जो शैतानी रास्ते पर है, जो कि रियलिटीज से मुंह फेरे हुए हैं, या जिनके पास किसी किस्म की रियलिटीज नहीं है, जो हकायक से आशना भी नहीं हो सके, वो भी बहुत सी स्टोरीज बनाकर, एक फर्जी स्टोरीज बनाकर, फर्जी मूवीज बनाकर, उन पर मिलियंस पाउंड और डॉलर का जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ट्रिलियंस डॉलर जो उसके जरिए कमा लेते हैं, वो मूवीज के जरिए वो जो होती है रिलीज की जाती हैं, ऐसी ऐसी मूवीज आएंगी आपको जिनमें मिलियंस डॉलर लगाए गए होंगे और ट्रिलियंस डॉलर उस पर जो है कमा लिया गया। ये क्यों? एक एक स्टोरी ऐसी जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, एक ऐसा हादसा है जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, एक ऐसा वाकया है जो कि रूनुमा हो ही नहीं सकता, जो इंसानी तसव्वुर है, इंसानी अक्ल उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपने तसव्वुरात की दुनिया में जाता है और उस मुख्तलिफ मूवीज को क्रिएट करता है जिसके जहन में ख्यालात आते हैं, उनको बगैर दलील के वो क्रिएट करता है और उसको मतरा करता है, माशरा उसके लिए चल देता है और माशरा उसको बहुत अच्छे अंदाज से देखता है, बहुत टाइम देता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है, उसको पसंद भी करता है। दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, समय हमारी दुनिया में होता है कि फर्जी चीजों के पीछे इंसान जा रहा होता है। तो ये करबला वो चीज है कि जो फर्जी चीज नहीं है, अगर इसको हम सही तरह से लोगों तक पहुंचाएं, उसको एक्सपोज करें लोगों तक, करबला में इतनी चाशनी कि लोग करबला को देखेंगे नहीं, करबला पे अपना अकीदा कायम कर लेंगे। लेकिन हम सफीर करबला है, हमारा काम यह है कि हम करबला दूसरों तक पहुंचाएं। और एक बात डेफिनेट है, एक अकली कानून मैं आपको बताऊं, फलसफे की दुनिया में कहा जाता है कि जो मोती शय होता है वो फाकिदु शय नहीं होता, यानी जो कुछ अता करने वाला होता है, जो कोई देने वाला होता है, वो चीज उसके पास होती है। अगर मैं किसी को 100 पाउंड दे रहा हूं, मुमकिन नहीं है मेरे पास 99 पाउंड हो मैं उसको 100 पाउंड दे दूं, ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है मेरे पास 101 पाउंड हो मैं उसको 100 दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद तो 99 पाउंड रखता हूं लेकिन मैं किसी को देने पे 100 पाउंड दे दूं। मेरे पास तो एक घर भी ना हो मैं दूसरे को 2 घर बना दूं, ये हो ही नहीं सकता है। इंसान के पास जो चीज नहीं होती वो दूसरे को अता ही नहीं कर सकता है। इसी तरह इल्म और मारफत में भी इसी तरह से है, जितना इंसान पास इल्म होता है 50% इल्म होगा, 50% इल्म देगा, यानी मैक्सिमम देगा। ये हो ही नहीं सकता वो 51% दे दे, वो 50% तो दे सकता है, अपने कामिल इल्म को तो मुंतकिल कर सकता है, लेकिन वो अपने इल्म से ज्यादा इल्म को तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए देने वाला जो होता है उस चीज में अगर वो चीज खुद उसके पास फाकिद हो, वो चीज उसके पास खुद मौजूद ना हो, तो वो इंसान दूसरे तक मुंतकिल नहीं कर सकता। अब करबला के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जितनी अच्छी तरह से हम करबला को समझेंगे उतने ही दूसरों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हम अपने गिरेवान में जाके कि हमने आज तक करबला को कितना समझा है तो हम दूसरों तक कितना पहुंचा सके हैं। अगर हम खुद ही करबला को नहीं समझ सके तो यकीनन हम दूसरों तक करबला पहुंचा ही नहीं सकते। सलावत पढ़े मोहम्मद अगर कोई शख्स 10% करबला को समझा, 20% उसने अंडरस्टैंड किया है व्हाट इज करबला एंड व्हाट हैपेंड देयर, अगर वो 10% समझे तो वो 11% किसी को नहीं समझा सकता। लेकिन अगर कोई 90% समझाए तो वो 90% समझा सकता है, 95% भी समझाए तो 95% में समझा सकता है। तो इसके माना ये हुए कि हमें खुद करबला को समझने के लिए कुछ फिक्र करना चाहिए, कुछ करबला को समझने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए, हादसे को समझने, हमें खुद भी कुछ अपनी तरफ से काम करना चाहिए। वरना अगर हमने इस तरह से काम नहीं किया तो यकीनन हम अपनी नस्लों तक मुंतकिल नहीं कर सकते। वो मोहब्बत जो हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है वो हम जब बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं कि अगर हमारे दिल में उस तरह से रिस्पेक्ट हो। अगर हमारे दिल में अहले बैत की वो रिस्पेक्ट नहीं, अगर हमारे दिल में वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं, अगर हमारे दिल में अहले बैत की वो मार्फत नहीं, तो यकीनन हम अपनी आइंदा वाली नस्लों को ये चीज नहीं दे सकते। और खुसूसन हम में से वो अफराद जो कि इस दुनिया में, जिसको हम यूरोप कहते हैं, जिसको अमेरिका और कनाडा हम कहते हैं, जिसको हम बर्तानिया कहते हैं, इन ममालिक में जो माइग्रेट करके आए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ज्यादा रिसर्च करें, वो ज्यादा देखें कि उनको बच्चों को टोटल हिंदी को बताना पड़ता है, यहाँ पे माशरे में कहीं वो और से सीख के तो नहीं आते। लिहाजा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम बच्चों को तारीख हिस्ट्री बताएं कि हिस्ट्री है क्या चीज, इसमें हुआ, कम अज कम उनको तारीख के मेन नुकात जो उनको पता हो। यानी हमारे अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज गदीर, तो एक बच्चा इतना जवाब दे सकते गदीर में क्या हुआ था, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं पता नहीं गदीर क्या है, तो हम उसको, वो बच्चा आगे कुछ नहीं बता पाएगा, वो जानते ही नहीं है क्या आशूर के दिन क्या हुआ। उस बच्चे को इतना पता होना चाहिए, आशूर जितना बड़ा बच्चा उसके हिसाब से उसको हमें इतनी तालीम और तरबियत हमें देना पड़ेगी। अगर हम ये नहीं देंगे तो यकीनन ये हमारी कोताही होगी। लेकिन हाँ ये याद रखें, कभी सैयद शहादा का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। हाँ हो सकता है हम ना हो हमारी नस्ल उसमें से निकल जाए, लेकिन क्योंकि ये जाते अंदर से इलाह का उस खुदा का वादा है कि जमीन पर जब तक जमीन पर ये हयात बाकी है उस वक्त तक सैयद शहादा का मातम बाकी है, और जब तक सैयद शहादा के मातम से हम वाबस्ता रहेंगे उस वक्त तक हमारी तशय्यो हयात रखती है। जिस दिन तशय्यो में और सैयद शहादा की आजादारी में फासला किसी ने पैदा कर दिया तो ये दिन आखिरी दिन होगा तशय्यो का, उस दिन तशय्यो तमाम हो जाएगी। तशय्यो को कोई चीज बचा ना सकी है ना बचा सकती है। मैं आपको शायद आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, मेरे लिए बहुत नई बात थी वो। अभी हमारे पास हमारे एक मौलाना आए हैं वेस्ट इंडीज से, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई मौलाना वेस्ट इंडीज से आए, क्योंकि वो बेचारे तक को तना है 20-25 वहां पे सुन्नी उलमा उनमें तना मौलाना है, 15 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ इदारे जाफरिया में वो इंग्लिश मजालिस पढ़ रहे हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे खतीब, इंग्लिश उर्दू के बेहतरीन खतीब और बेहतरीन कारी, लर्नेड आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, पहले वेस्ट इंडीज में काम कर रहे हैं। तो ऐसे उनसे गुफ्तगू हुई वहां के तशरीफ लाए के, जब मैं वहां गया था तो वहां से 3 शिया थे, चौथा मैं था, कह रहे 3 शिया थे वहां पे, लेकिन 15 साल की तबलीग में उन्होंने 300 से 400 अफराद को शिया
बनाया।
ये वगैरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी और बड़ी खिदमत, लेकिन जो मुझे बयान करना है वो ये कि वहां पे उन्होंने कहा एक कौम बसती है जो पिछले 180 साल से वहां पे या 160 साल उसकी हिस्ट्री बनती है, और वो अपने आप को होसा कहते हैं, होसा या होसा कहते हैं। ये वो अफराद हैं जब अंग्रेज हुकूमत करता था हिंदुस्तान में, इंडिया में जब अंग्रेज रूल करते थे तो उस वक्त कुछ अफराद को काला पानी की सजा दी जाती थी, मुल्क बदर किया जाता था। तो ये वो अफराद हैं कि जिनको मुल्क बदर किया गया था और उधर अफ्रीका इन तरफ भेजा गया था, तो वो वहां वेस्ट इंडीज, बहरहाल वहां भी भेजा गया, वेस्ट इंडीज में भेजा गया, तो वहां पे भी वो लोग जमा हो गए और मुख्तलिफ जगह ही बिखरे हुए थे, और इनकी तारीख 160 से 180 साल पुरानी। लेकिन उनसे अगर पूछो वो क्या है उनको खुद नहीं पता, अपने आप को होसा कहते हैं। लेकिन जब आशूर नहीं, जब माह मुहर्रम का जब चांद निकलता था तो उस दिन से लेके 10 दिन तक वो एक मकाम बनाते थे जिसको इमामबाड़ी कहते थे, कहते हैं आज भी कहते हैं, और ताजिए जैसे इंडिया में निकलते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो ताजिए बनाते थे। ताजियों के गिर्द जो है वो रस्सियां से हल्का बनाते थे, रस्सी लगा देते थे, और उस रस्सी के इस तरफ कोई अल्कोहल लेकर या चप्पल पहनकर नहीं आ सकता था, इतना एहतराम वो ताजिए करते। उनसे हिस्ट्री उनकी बड़ी अजीबोगरीब थी, क्योंकि जाहिर है जहालत थी, को जानते नहीं थे, और आज भी वो बहुत कुछ नहीं जानते। तो वो शबे आशूर से उनका एक जुलूस निकलता था जो हर सिटी में निकलता था, बाद में गवर्नमेंट ने महदूद करके उसको जो है कोलंबिया पता नहीं कौन सा सिटी उसमें महदूद कर दिया, लेकिन वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे होता है वो कि पूरा कैपिटल है और कैपिटल को ब्लॉक कर दिया जाता है, और कैपिटल के जो कैपिटल है उसके अंदर कोई गाड़ी नहीं आ सकती, इतना बड़ा जुलूस होता है शबे आशूर से लेके आशूर तक। उसमें होते हैं, उसमें जाहिर वो मसाइब नहीं पढ़ते, वो मातम वगैरह नहीं करते, लेकिन आजादारी इसमें के जुलूस निकालते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते रहते हैं। उसमें 2 अलम बनाते हैं फूलों के, एक सब्ज रंग का होता है, एक सुर्ख रंग का होता है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है, और उसको वो मून कहते हैं, मून ऑफ हुसैन, मून ऑफ हसन। वो उठाते उनकी रिवायात के मुताबिक आशूर के दिन प्रॉफिट के इमाम जो ग्रैंड सन थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों जो थे वो शहीद, उनके मुताबिक लिहाजा वह अखबारों में भी ये चीज आती है, और उस दिन बाकायदा ऐलान होता है गवर्नमेंट की सतह पर कि आज प्रॉफिट के सन जो है वो किए गए, उसको सेलिब्रेट किया जाए, लोग शिरकत करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। और बाद में एक अहले सुन्नत के आलिम दीन आते हैं, और आने के बाद वो कुछ फातिहा पढ़ते हैं, नमाजें गायबाना भी पढ़ाते हैं, ना उनको नमाज आती है, ना उनको तिलावत आती, कुछ उनको नहीं आता। आखिर दिनों में हुआ ये कि यानी आखिरी दिनों से मुराद आज से 6-7 साल पहले से, वहां पर जब वहाबियों ने बहुत मस्जिदें बनवाई और वहाबियत का बहुत ज्यादा चर्चा हुआ वहां पर, तो वहाबियों ने उन्होंने कहा तुम शिया हो, उन्होंने कहा ना शिया है ना सुनिए, होते क्या हमको यही नहीं पता, हम होसा हैं, हम शिया नहीं है, होसा भी वो हुसैन से है, यानी हम हुसैन वाले लोग हैं, हमें शिया सुनने का नहीं पता, लिहाजा वो कहते नहीं तुम शिया हो, क्योंकि सिर्फ आजादारी करते थे तुम शिया। तो जब इन्होंने कहा तो वो भी चारे सिद्ध में आ गए, अच्छा तुम कहते हो शिया हो तो हम अपने आप को शिया ही कहते हैं, अगर मुराद अजादारी से मुराद ये कि तुम शिया ही करते हैं तो ठीक है हम शिया है। तो बहरहाल ये शियों के तो फायदे में हुआ, इतने सारे लोग वहां पर शिया कहलाते हैं, लेकिन मैं जिन 300-350 अफराद की बात कर रहा हूँ वो वाकई निसनाशरी है, वो ये लोग नहीं, ये तो 1500-2000 इससे भी ज्यादा ही अफराद हैं। कहने का मकसद ये है कि इनके दरमियान, अब वो मौलाना ने उनके दरमियान तबलीग की, कहा देखो बात ये है कि ये जो नमाज गायबाना है और फातिहा ये हमारे यहाँ नहीं होता आशूर के दिन, और ये कॉन्सेप्ट हमारी मकतब तशी में नहीं है, अहले बैत जिसको तुम मानते हो उनके मकतब में ये रवाज नहीं है, तुम उन मौलाना साहब को ना बुलाओ, मैं तुम्हारे पास 10 दिन आऊंगा और 10 दिन में लेक्चर दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मैं तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा, क्यों गुर्बत है वहां पर, क्या मैं पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि करबला क्या है, क्योंकि उन्होंने भी जहां ताजिए ठंडे करते थे उस जगह का नाम ही करबला रखा था, सारे ताजिए ले जाके उधर वो दफना दिया करते थे, उसी को करबला भी कहते, नाम भी करबला रखा था, ये पूरी आजादारी है वो, लेकिन उस आजादारी के पर्पज मकसद उसके बैकग्राउंड से कुछ भी वो वाकिफ नहीं थे। मौलाना ने उनके दरमियान तबलीग करना शुरू की आजादारी के सिलसिले में, जाहिर है और चीजें उनको नहीं अभी बताया जा सकता, तो आजादारी सिलसिले होते होते अब वो इस हद तक आ गए हैं कि अगर उनके कोई मर जाता है तो मौलाना को कॉल करते हैं, मौलाना आके आप जनाजा पढ़ाएं, अगर शादी करना चाहते हैं तो कहते हैं मौलाना आ के निकाह पढ़ दें, इस हद तक वो आ गए। अभी भी नमाज रोजे तक वो नहीं आए, फिर को वो नहीं समझ सके, जाहिर है वो बहुत पुरानी उनकी तकरीबन 100-150 साल मैंने बताया उनकी हिस्ट्री है, इतनी जल्दी नहीं। कहने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि आप देखें उन्होंने आजादारी से शहदा को हिफ्ज किया, खुदा बंदे मुताल इस बरकत के सदके में आज नहीं आज से 50 साल के बाद उनकी तमाम नस्लों को शिया पर बना दिया, इसलिए कि उन्होंने सैयद शहदा के जिक्र को बाकी रखा। सैयद शहदा का जिक्र ऐसा जिक्र है जो इंसान से उसका तशख्स नहीं बल्कि उसकी शिनाख्त बन जाता है, छीनता नहीं है। करबला यानी दुनिया को मजबूर हो कि उन्हें कहना पड़ा कि तुम शिया हो, कहना पड़ा इसलिए कि इमाम मजलूम का वो नाम ले रहे थे। लिहाजा करबला वो एक ऐसा हादसा है, ऐसा वाकई, इसको अगर फरामोश कर दिया तो हम तो फरामोश हो सकते हैं, करबला फरामोश नहीं की जा सकती। ऐसा मुमकिन नहीं है कि माह मुहर्रम का चांद जमीन पर तुलू करे और या हुसैन की सदाएं बुलंद ना हो, ये इम्कान नहीं है। हाँ ये इम्कान है कि हम या हुसैन ना करें, या हमारा कोई फर्द या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारी कम्युनिटी का फर्द वो या हुसैन ना करे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी से ये बनती है कि हम जितना हो सके इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, इसको बचाएं, इसको महफूज करें, ये हमारी असासा है। असासा तमाम तर हमारी जो दौलत है, एसेट्स की सूरत में हमारे पास अगर कोई चीज मौजूद है तो वो सैयद शहदा की आजादारी है। और मुझे याद नहीं कि मैंने मिसाल पहले दी है कि नहीं दी है, मैं आजादारी के लिए मिसाल दिया करता हूं कि आजादारी वो चीज, उस चीज का नाम है, उस हयात आबे हयात का नाम है, उस तरावट का नाम है, उस जिंदगी का नाम है, उस तहारत का नाम है, कि अगर आजादारी बाकी रहती है तो वो उसी तरह से होती है जैसे एक बाग हो जिसमें खजूर के भी दरख्त हो, सेब के भी दरख्त हो, वो मैंगो के भी दरख्त हो, बनाना के भी दरख्त हो, चेरी के भी दरख्त हो, और फूलों के भी दरख्त हो, गुलाब भी हो, दीगर फूल भी हो, फ्लावर्स भी लगे हुए हो, वो हो, सब कुछ हो, लेकिन उस बाग में अगर पानी ना हो तो वो बाग मुरझा जाता है। सईद शहदा की आबे आजादारी वो आबे हयात है जो नमाज को भी हयात देती है, जो रोजे को भी हयात देती है, जो हज के मफहूम को भी बयान करती है, जो ज़कात को भी बयान करती है, जो खैरात को भी बयान करती है, जो खुम्स को भी माना देती है, जो अमल मारूफ का सबब बनती है, जो नहीं मुनकर का सबब बनती है, जो तवल्ला का सबब बनती है, जो तबर्रा का सबब बनती है, मोहम्मद अगर ये चीज बाकी रह गई तो याद रखें नमाज दुनिया में बहुत अफराद पढ़ते हैं। हज मैं इस साल खुद देख कर आया हूँ, 35 लाख अफराद हज करने आए थे। हज दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, जकात दुनिया में बहुत सारे लोग अदा करते हैं, लेकिन उस जकात पर वो जकात ऐसी जकात होती है जो मकरूस होती है, वो हज ऐसा हज होता है जो मकरूस होता है, वो नमाज ऐसी नमाज होती है जो मकरूस होती है, वो रोजा होता है जो मकरूस होता है। मकरूज इसलिए होता है कि कुरान ऐलान कर रहा है, ए नबी इनसे कह दिए वल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल फरबा, अहले बैत ए रसूल आप इनसे कह दीजिए ये नमाजें पढ़ते चले जाएं, ये रोजे रखते चले जाएं, ये जकात देते चले जाएं, ये इबादत देते चले जाएं, अगर आपके अहले बैत से मवद्दत न रखी तो इन्होंने कर्जदार इबादत की है और कर्जदार इबादत को मैं कबूल नहीं करता। पहले अपनी इबादत की उजरत करो फिर तुम्हारी नमाज भी कबूल है। شہزادہ اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے، یہ فرش ادا اجر نماز کی ادائیگی کا اعلان ہے، یہ فرش ادا اجر روزے کی ادائیگی کا اعلان ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے، لہذا ماہ محرم میں زداری کرتے ہیں، ہم نے سال بھر نماز پڑھی ہے اس لیے ہم ماہ محرم میں زداری کرتے ہیں، ہم حج پر گئے ہیں لہذا ماہ محرم میں زداری کرتے ہیں، ہم خود ادا کرتے ہیں اس لیے ہم ازاداری کرتے ہیں، ہم عمل معروف کرتے ہیں، ہم نہیں نہیں منکر کرتے ہیں، ہم تبرع کرتے ہیں، ہم تولا کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب عبادات ہم انجام دیتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، لیکن تیرے حسین کا فرش بچھا کر اجر رسالت ادا کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ الہی ہماری عبادات قبول ہو جائے۔ یہ اجر رسالت کا مقام ہے، یہ پیغمبر کو اجر رسالت ادا ہو رہا ہے، یہ فرش ادا اجر رسالت کی علامت ہے، یہ بچھا کر ہم بتاتے ہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، جو دین آپ لے کر آئے تھے اس دین کو حسین نے بچایا ہے، ورنہ اذان نہ دی جاتی، ورنہ نہ نماز پڑھی جاتی، نہ روزہ رکھا جاتا، 95% مسلمان وہ تھے یا اس سے زیادہ مسلمان وہ تھے جنہوں نے یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کر لی تھی، یہ حسین کا کرشمہ ہے، یہ حسین کی برکت ہے، یہ حسین کا امتیاز ہے، یہ حسین کی نعمت ہے کہ آج مسلمان 95% سے زیادہ مسلمان یزید سے بغض رکھتے ہیں، اسے لعین کہتے ہیں، اسے مردود کہتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں، اسے مرتد کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے قیام کر کے بتا دیا عاشورہ حق ہے، حسین حق ہے اور یزید باطل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن نہیں ہے، یہ امام حسین کی کھلی فتح کا اعلان ہے، تبھی تو کسی نے پوچھا تھا کہ امام سجاد سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کو کربلا میں فتح ہوئی تھی کہ آپ ناکام ہوئے تھے، اہل بیت کو فتح حاصل ہوئی تھی یا اہل بیت ناکام ہو گئے تھے؟ مولا نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، اتنے میں مؤذن نے اذان دی، کہا دیکھو یہ اذان بتا رہی ہے ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، یہ اذان بتا رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اسی اذان کو تو میرے بابا نے بچایا تھا، اسی دین کو تو میرے بابا نے بچایا تھا، اگر حسین نہ ہوتے تو نہ قرآن کی تلاوت ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ کچھ اور ہوتا، اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو دین کا رشتہ یہ بتا دیا کہ تمہارے اور حسین میں فرق یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسموں میں حیات ہے تمہارا رشتہ دین سے باقی رہے گا، دین کی باقی رہنے کا نام، دین سے رشتے کا نام قرآن ہے، قرآن ایک مرکزی کتاب ہے، قرآن ایک بہترین کتاب ہے، قرآن ایک فائنل کتاب ہے، قرآن ایک وحی مطلق ہے جس کا ہر حرف وحی ہے، ہر حرف معصوم ہے، جس کا ہر حرف خدا بند متعال کی عطا ہے، خدا بند متعال کا تحفہ ہے، خدا بند متعال کی نعمت ہے، خدا بند متعال کی بلیسنگ ہے، ہر 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 خدا بند متعال کا۔ امام نے فرما دیا، کہا دیکھو میرا کردار دیکھ لینا، میرا اس قرآن سے رشتہ ایسا ہے کہ تم دیکھ لو، میرا گلا کٹ گیا، میرا سر کٹ گیا، میرے سر اور تن میں انہوں نے جدائی کر لی، لیکن عفرت کو قرآن سے جدا نہ کر سکے، میں نے نیزے میں پڑھ کر قرآن بتایا کہ تم قرآن کو عفرت سے جدا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ امام مظلوم نے اس دین کو بچایا، محسن انسانیت بھی حسین ہے اور محسن دین بھی حسین۔ اب یہاں پر ایک سوال، اب وہ سوال صرف اتنا کہ اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شیعہ حضرات پر احسان کیا، تو یہ جملہ ایسا مبہم اور ایسا بیتکا کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جبکہ آپ سب شیعہ الحمدللہ، لیکن آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے عجیبی بات کر دی، امام حسین نے شیعوں پہ احسان کیا، شیعوں کے دین پہ، شیعوں کے جو ہے بچا لیا، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے نہیں، امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کو بچایا، اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، تو آپ کہتے یقین ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حسین محسن انسانیت کا نام،
سبحان اللہ،
حسین نے ان اقداروں کو بچایا جو کہ انسانیت کے اقدار ہیں، دین کے اقدار بعد میں آتے ہیں، دین کی احکام بعد میں آتے ہیں، پہلے انسانیت کے احکام آتے ہیں. دیکھیں چھٹے امام اب قافلے میں سفر کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کوئی شخص دور پیاسا ہے اور وہ اکیلے پڑا، پیاسا تو نہیں پڑا چلا، وہ اکیلے پڑا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے بھیجا، چھٹے امام نے بھیجا، جا کے دیکھو یہ کون ہے. وہ لوگ گئے اور دیکھا، دیکھ کر واپس آ گئے. تو امام نے پوچھا وہ کون تھا اور کیا تھا، کہنے پیاسا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو امام نے کہا تم نے پانی دیا؟ تو کہا نہیں. کہا اس لیے کہ یہودی تھا. تو امام علیہ السلام نے کہا حیا کا مقام ہے، وہ انسان تھا، وہ انسان تھا. تمہیں اگر وہ تمہارا دینی بھائی نہیں تھا تو تمہاری طرح کا انسان تو تھا، تمہیں انسانیت کے اقدار پہ ہوتے ہوئے اس کو پانی پلانا تھا. یہ اہل بیت کا درس جو میں نے آپ کو بتایا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانیت کو بچایا وہ اسی لیے کہ حسین نے وہ دین دیا ہے، وہ مذہب دیا ہے. حسین اس کو فالو کرنے والے ہیں کہ جب صفین میں قبضہ ہو جاتا ہے لشکر معاویہ کا تو وہاں پہ کھلبلی مچتی ہے کہ جب تک ہمارا لشکر سوار تھا تو علی اور علی کے لشکر میں پانی بند کر دیا تھا، لیکن آج علی والے جب آ گئے ہیں، جب علی والے آ گئے ہیں تو آج علی والوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. معاویہ کے لشکر پریشان تھا کہ یہ ہم پر ہی پانی بند کر دیں گے، پریشان ہو کر اپنے امیر سے کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ہم پہ پانی بند کر دیا، لیکن تھا تو بغضی. دیکھیں بات نہیں ہوتی ہے، اگر دوست کسی کی تعریف کرے اسے ہم فضائل نہیں کہتے، لیکن اگر درینہ دشمن کسی کی تعریف کرے، علی کا کمال ہی یہ ہے کہ علی کا جو درینہ دشمن تھا اس نے بھی کلام یہ کیا، کہا تم اطمینان رکھو ابو الحسن سے اس طرح کی بات گفتگو ممکن نہیں ہے، اگر ان کا قبضہ ہو بھی گیا ہے تو وہ ہم کو کیا ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلائیں گے. سلوات پڑھے محمد امام مظلوم وہ ہیں کہ انہوں نے کربلا میں پہنچے نہیں تھے تو ہر کے لشکر کو سیراب کیا تھا، نہ فقط ہر کے لشکر کو سیراب کیا تھا بلکہ کہا تھا ہر کے لشکر کے جو جانور ہیں ان کو بھی پانی پلا دو، ان کو بھی پانی دے دو، اس لیے کہ یہ انسانیت سے ہی بڑھ کر چیز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں روایات میں آیا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور پر بھی ظلم کرے، کسی جانور پر بھی ظلم کرے، قیامت کے دن وہ خداوند متعال کے سامنے حساب و کتاب دے گا. یہ ہے دین اسلام. انسان انسان پہ ظلم کرے بہت دور کی بات ہے، ایک مومن مومن پہ ظلم کرے بہت دور کی بات ہے، ایک بھائی بھائی پہ ظلم کرے یہ اس سے بڑی بات ہے. لیکن پیغمبر اسلام جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے جانور کے اوپر بھی ظلم کیا، اگر جانور کو بھی تم نے اذیت دی، تو یقین کرو تم خدا کیوں اس کا حساب و کتاب دو گے. اب انسان خود دیکھ لے کہ اس نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہو، اس نے کسی مومن پہ ظلم کیا ہو، اس نے اپنے رشتہ دار پہ ظلم کیا ہو، اس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو. جیسے جیسے رشتے بڑھتے چلے جائیں گے، انسانیت سے مضبوط رشتہ ایمان کا ہے، ایمان سے مضبوط رشتہ جو ہے خونی رشتہ ہے، خونی رشتوں میں پھر سگا بھائی ہے. جیسے جیسے رشتے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے رسپانسبلٹی اتنی بڑھتی چلی جائے گی. خدا وند متعال کی بارگاہ میں ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. اور مظلوم کربلا کا جو پیغام ہے، مظلوم کربلا کا وہ یہی پیغام ہے کہ دیکھو تمہیں جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا ہے، تمہیں انسانیت پر ظلم نہیں کرنا ہے، تمہیں مظلوم رہ کے تم زندہ رہ سکتے ہو لیکن ظالم بن کر نہیں رہ سکتے. یہاں پر میں ایک سوال کر کے اور آج کی گفتگو کو تمام کروں کہ اگر آج ہمارا امام جو پردے غیبت میں ہے، جو وارث عذاب ہیں، وہ آج آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ سب سے بڑا ملک جو ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ امام کی فوج میں ہوگا، کہیں گے مولانا خیریت ہے آپ کی، امام کی فوج میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو سوال یہ کروں گا کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا مولانا وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، کئی ممالک پہ تجاوز کیا ہے، افغانستان میں، پاکستان میں، عراق میں، اب یمن کی تیاری ہیں، بہرحال یہ تجاوزات کیے ہیں، ظلم کیا ہے. پھر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا اس نے اپنی قدرت سے بڑھ کر ظلم کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں والا، قدرت سے بڑھ کر، جتنی اس کی قدرت تھی، جتنی اس کی پاور تھی، اس نے اتنی پاور دکھائی. کہا ہم بڑے ملک والے لوگ ہیں، ہمارا قانون چلتا ہے، ये अकवाम मुत्तहिदा जो है ये तो सिर्फ नाम नहीं आते, काम तो हमारा चलता, आप सब जानते हैं हकीकत क्या है। ये तो बहुत सी चीजों को सेव करने के लिए, मैं तो कहता हूं कुछ चीजें इस दुनिया में इसलिए बनाई गई हैं ताकि जुर्मों को भी जो जराइम किए जाएं उनको भी एक सर्टिफिकेट दिया जाए, कानूनी दायरे में रहकर जुर्म किया जाए। असल में वरना जुर्म या अगर ये ना भी बनाते तो भी जुर्म इनको यही करना थे, लेकिन उसको ही मुजरिम कहलाते, अभी सर्टिफिकेट लेकर जुर्म करते ताकि मुजरिम ना कहलाए। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो सवाल मेरा यही था कि उन्होंने अपनी कुदरत से बाहर तो जुर्म नहीं किया, जितनी उनकी कुदरत में था उन्होंने उतना ही जुर्म किया। अगर फिरौन आ जाए तो फिरौन अगर अपने नबी के लश्कर में कैसे हो सकता, तो उसके पास जो कुदरत थी उसने जुल्म किया। नमरूद आ जाए तो नमरूद अपने लश्कर में ऐसे ही था जिसने इतना जुल्म किया। आज का भी यजीद आ जाए तो वो भी ऐसे ही, उसने इतना ही जुल्म किया। तो पता चला कि जुल्म तो इंसान अपनी कुदरत और पावर के मुताबिक करता है। तो हम अपने आप से सवाल करें कि हमारे इख्तियार में जो अफराद हैं जिन पर हम पावर रखते हैं, चाहे वो हमारे कलीग्स हों, चाहे वो मोमिनीन हो, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हमसे बूढ़े हो गए हों, अब वो हमारे अंडर आते हों, लिहाजा जो भी हमारे अंडर आता है आया हम उसका हक अदा कर रहे हैं, आया हम उसका हक दे रहे हैं। अगर हक नहीं दे रहे तो बस फर्क इतना है उसका जितना दायरे हुकूमत है वो इतना बड़ा जालिम है, हमारा जितना दायरे हुकूमत है हम उतने बड़े जालिम है। अगर वो इमाम के जमाने इमाम जमाने लश्कर में नहीं आ सकता तो इमाम का क्राइटेरिया तब्दील नहीं होगा, तो इमाम के लश्कर में हम भी नहीं जा सकते हैं। जब तक के हम उन चीजों को बुरा ना समझें, अपने आप को उन चीजों से पाक ना कर लें, उन चीजों से इस्तगफार ना कर लें कि मौला गलती इंसान से होती है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, और जिसका हक मारे उससे हम माफी मांग लें, जब हम ये कुछ कर लेंगे तो यकीनन हमारा इमाम हमें कबूल करेगा। आज भी इमाम मजलूम की सदा गूंज रही है, हल मिन नासिर यंसुरना, लेकिन आज का हुसैन और है जो साहिब असर है, जो साहिब जमान है। आज वो इमाम आवाज दे रहा है, कौन है जो उसकी नुसरत ले, क्योंकि पहली मजलिस है। लिहाजा एक बात कहूंगा और आप लोग अपने अपने दिल में फैसला कर लीजिएगा, शायद पूरे अशरे में अल्लाह ताला अगर मुझसे सिर्फ यह कबूल कर ले और आपसे यह कबूल कर ले तो हमने हल में नासिर का जवाब दे दिया। अगर हम अपने आप में देखें हर शख्स के अंदर, मेरे अंदर भी और बहुत अफराद के अंदर भी, मैं आप लोगों की जसारत नहीं करना चाहता, लेकिन हर फर्द के अंदर कोई ना कोई मनफी होता है, कोई ना कोई निगेटिव पहलू होता है, किसी चीज में वो लूज होता है। इंसान खुद गौर करे, खुद देखे कि मैं किस चीज में लूज हूं, क्या मैं झूठ ज्यादा बोलता हूं, क्या मैं रिश्वत ज्यादा करता हूं, क्या मैं हराम पैसा खाता हूं, क्या मैं वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्या मैं बीवी का ख्याल नहीं रखता, क्या मैं शौहर का एहतराम नहीं करती, क्या मैं बच्चों का ख्याल नहीं करता, क्या मैं अपने क्लीज के साथ सख्त हूं, क्या मैं ये काम करता हूं, क्या मैं वो काम करता हूं, जिससे क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं हज नहीं देता हूं, क्या मैं ज़कात नहीं देता हूं, क्या मैं खुद सजा नहीं करता, क्या मैं मामले में जो भी अहकाम है, क्या आया मैं तिलावत कुरान से महरूम हूं, मैं कुरान की तिलावत नहीं करता। जो भी इंसान के अंदर ऐब है, जिस जो ऐब सबसे ज्यादा ऐब लगे और जो देखे कसरत के साथ मेरे अंदर पाया जाता है, आज मौला आप कह रहे हल मिन नासिर यंसुरना, आपका फरसंग भी कह रहा हल मिन नासिर यंसुरना, मौला आपका पैगाम क्या है, आप चाहते क्या है कि ये दीन कायम हो जाए। मौला इस अज़ादारी के सप्ते में हम आपसे वादा करते हैं कि आज हम आपके फर्श अज़ाए बैठे हैं, हम अपनी एक मनफी चीज को पकड़ेंगे और इस दो महीने आठ दिन तक हम प्रैक्टिस करेंगे कि उस मनफी चीज को, उस निगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में तब्दील कर दें, तो यकीनन वो एक बुराई का छोड़ देना हुसैन के नाम पर और उस आजादारी के नाम पर एक बुराई को भी अगर हमने छोड़ दिया तो यकीनन हम सैयद शहदा के नजरिए में कामयाब हैं, हम कामरान हैं। यकीनन ये पैगाम फिर हम दे रहे हैं, अमली तौर पे हम इमाम हुसैन के पैगाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका पैगाम यही है, उनका पैगाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम छोटी चीज से शुरू करें, हम अपने आप से शुरू करें। जैसे मैंने अर्ज किया, हो ही नहीं सकता जो चीज मेरे पास ना हो मैं दूसरों को अता कर दूं, पहले अपने आप को डेवलप करना है, पहले अपने आप को बनाना है, फिर दूसरों को दावत देनी। अजान मोहतरम सैयदो शहदा वो उस मजलूम हस्ती का नाम है कि कायनात में आप रिवायतें उठा के देखें, जनाब आदम से लेकर खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर इस्लाम तक और उसके बाद आइमा थार से अव्वल से लेकर आखिरी इमाम तक किसी मासूम की विलादत पे गिरिया नहीं हुआ, किसी मासूम की विलादत पर मातम नहीं हुआ, किसी की मां नहीं रोई है, हर की मां मुस्कुराती है। किसी की माँ गिरिया नहीं करती है, किसी का बाप गिरिया नहीं करता, किसी का दादा गिरिया नहीं करता, लेकिन ये हुसैन वो मजलूम हुसैन है कि जिस दिन आपकी विलादत होती है, इसलिए तो शायद ने कहा आज इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल गए, इसलिए कि आज उसकी विलादत है, किसके खुशी में भी आंसू निकले तो बेहतर है। ये वो विलादत थी हुसैन की जिस पर माँ ने गिरिया किया, जो सबसे ज्यादा खुश होती, जो हर तकलीफ को भूल जाती है, जो हर दर्द को भूल जाती है, जो हर मुसीबत को भूल जाती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए माँ बच्चे के सामने भूल जाती है। लेकिन ये वो ऐसा बच्चा है कि जब पैगंबर इस्लाम की आगोश में दिया गया तो पैगंबर इस्लाम लेकर भी चूम रहे थे कि इतने में पैगंबर इस्लाम ने गिरिया शुरू कर। जब पैगंबर इस्लाम गिरिया करने लगे तो जनाब सैयद आगे आती है, पूछती है बाबा जान ये मेरा बच्चा, आप मुझे मुबारकबाद दीजिए, आप खुश होइए, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, ये मेरा हुसैन, मैंने इसका आपने इसका नाम हुसैन रखा है, ये हसन का भाई है, आज हसन जो है उसका कुव्वत बाजू आ गया, आप मुझे मुबारकबाद दीजिए। आप एक मरतबा सर झुका के पैगंबर ने कहा भी बेटी तुम वो नहीं जानती जो जिब्राइल ने मुझे बता दिया है, इसलिए कि ये मेरा तुम्हारा वो फर्जंद है जो दश्ते बला में इस बेदर्दी से मारा जाएगा, ना इसको कोई पानी देगा और ना इसको कोई खाना देगा, ये भूखा प्यासा दश्ते बला में शहीद किया जाएगा। ये सुनना था जीजो, आज भी किसी माँ से कह दीजिए अब इसका बच्चा तो माँ तड़प के रह जाएगी, फिर माँ भी फातिमा जैसी माँ जो कामिल माँ थी, जो इस्मत में ढली हुई माँ थी, एक मरतबा माँ ने कहा बाबा जान तो आप कुछ मेरे बच्चे को बचा ना सकेंगे अपनी उपस्थित, मैंने इस्लाम ने कहा नहीं बेटा मैं उस वक्त नहीं हूँगा, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, ये मेरे दीन को बचाएगा लेकिन मैं उस वक्त नहीं हूँगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। कहा बाबा तो अली मुर्तजा तो होंगे, हसन के बाबा हुसैन के बाबा तो होंगे, अबल हसन तो होंगे, मौला कहमे इस्लाम कहते नहीं बेटा वो भी नहीं होंगे। अब माँ का सब्र का पैमाना बढ़ता जा रहा है, फिर एक मर्तबा बाबा अच्छा ये बताइए मैं तो होंगी, मैं तो अपने माँ बच्चे पर मातम तो कर सकूंगी, मैं गिरिया तो कर सकूंगी। कहा बेटा तुम भी नहीं होगी, तुम भी गिरिया करने को सोच ना होगी। कहा अच्छा इतना बता दे ये हसन और हुसैन तो एक साथ है, क्या ये तो होंगे? इसे 6 महीने का फर्क था इमाम हसन इमाम हुसैन में। कहा इन दोनों में ये दोनों भाई तो एक साथ होंगे, मेरा हुसैन तना तो नहीं होगा। इमाम पैगंबर इस्लाम कहते नहीं बेटा तेरा भाई बेटा हसन भी शहीद हो चुका होगा और वो भी उस वक्त ना होगा। एक मर्तबा जनाब सैयद अब तड़प गई, जो को गिरिया था वो आवाज बुलंद गिरिया होने लगा, कहा बाबा अगर हम में से कोई नहीं होगा तो मेरे हुसैन ने रोएगा मेरे हुसैन की गुरबत से रोएगा, अरे दुनिया को कौन बताएगा कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद किया गया। जिसके बच्चियां तेरे बच्चों का मातम करेंगी, जिसकी औरतें तेरी औरतों का मातम करेंगी, जो हुसैन पर गिरिया करेंगे, ए बेटी इस तरह से दुखिया ना हो कि जिस तरह हुसैन पर गिरिया होगा कायनात में इस तरह किसी पर गिरिया ना होगा, जिस तरह हुसैन पर बचिया ना होगा इस तरह बचिया ना ना बिछेगा। ये माँ बिना माँ घबरा गई अजीजों, लेकिन इमाम रेजा बताते हैं कि ये घबराहट किस बिना पर थी। इमाम कहते हैं सलाम मेरा उस जज के ऊपर जिसको गोस्पद की तरह सिवा कर दिया गया, मेरा सलाम उस मजलूम हुसैन पर जिस तरह जानवर को सिवा किया जाता है। उलमा ने लिखा का इसलिए इमाम ने यह कहा कि हुसैन की शहादत इतनी दर्दनाक थी, इतनी अलमनाक शहादत थी, इसलिए कि जब जानवर को सिवा किया जाता है तो कोई उसका तरफदार नहीं होता, किसी के दिल में रहम नहीं आता, कोई तड़प के क्रिया नहीं करता, कोई उस पर मातम नहीं करता, सबकी आंखों के सामने उसे सिवा किया जाता है। इमाम कहते मेरे जब को इस तरह सिवा किया गया कि सिवा करने वालों के दिल में रहम न था, कोई हुसैन पे तड़प न रहा था, कोई हुसैन पे मातम न कर रहा था, पर से अजा बिछा लिया है, आपके बच्चे के बाद हम को तैयार है, इस अजादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदा इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
सही।